नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। इसराइल ने फिलिस्तीनी हमास हमले में शामिल होने पर लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी गुट को चेतावनी दी। इन हमलों में दोनों ओर के 500 से अधिक लोग मारे गए। अफगानिस्तान में तेज भूकंप से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। बाढ़ग्रस्त सिक्किम में नुकसान के आकलन और सहायता मुहैया कराने के लिए अंतर मंत्रालय समिति आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हुई, 122 अब भी लापता। वायुसेना ने आज अपनी 91वीं वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से इटली और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। इसराइल और हमास के बीच जारी तनाव के बीच लेबनान के हिजबुल्ला गुट ने आज इसराइल में 3 ठिकानों पर कई दर्जन रॉकेट दागे। ये रॉकेट विवादित क्षेत्रों के अलावा इसराइल के नियंत्रण वाली गोलान की पहाड़ियों पर भी दागे गए। हिजबुल्ला गुट ने बताया कि उसने ये हमले फिलिस्तीन के समर्थन में किए हैं। इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान के ठिकानों पर हमले किए हैं और हिजबुल्ला को मौजूदा संघर्ष से अलग रहने की चेतावनी दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा को निर्जन इलाका बना देने की धमकी दी है और लोगों से इस इलाके को खाली करने को कहा है। हमास के हमलों के जवाब में इसराइली सेना ने ऑपरेशन सॉर्ड ऑफ आयरन शुरू किया है। इसराइल में हमास के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है और 1500 लोग घायल हैं। विश्व के प्रमुख नेताओं ने हमास आतंकियों के इसराइल पर हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कहा है कि संकट की इस घड़ी में भारत की संवेदना इसराइल के निर्दोष पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ है। हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने रामल्ला में रह रहे भारतीय नागरिकों से आपात स्थिति में संपर्क करने को कहा है। कार्यालय ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर है 0592916418। व्हाट्सएप नंबर है 9705929146। पश्चिमी अफगानिस्तान में ईरान से लगी सीमा के पास आए भूकंप में मृतकों की संख्या 2000 हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है क्योंकि कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। ये भूकंप स्थानीय समय के अनुसार लगभग 11 बजे आया। इसका केंद्र हेरात शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था और इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय के अनुसार भूकंप से कम 465 भवन नष्ट हो गए हैं जबकि 135 भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हेरात में टेलीफोन सेवा बाधित हो जाने से प्रभावित लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। तालिबान ने स्थानीय लोगों से घायलों को अस्पताल पहुंचाने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की है। गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने आज सुबह सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से भेंट की। दोनों नेताओं ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान पर विस्तार से चर्चा की। श्री तमांग ने इस आपदा के समय राज्य का दौरा करने के लिए श्री मिश्रा को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की निगरानी और मार्गदर्शन में केंद्र से त्वरित प्रतिक्रिया मिलने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। श्री तमांग ने राज्य में राहत और पूर्व स्थिति बहाली के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य आपदा मोचन बल को अग्रिम बजट तत्काल जारी करने के लिए भी आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने 5 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक अंतर मंत्रालय टीम गठित करने के लिए भी केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। ये टीम आज सिक्किम का दौरा कर बाढ़ से हुए आकलन का मूल्यांकन कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में सामान्य स्थिति बहाली के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इससे पहले आज तड़के 1:45 पर एनडीआरएफ की 22 सदस्यीय टीम गैंगटॉक पहुंची। ये टीम मंगन के लिए रवाना हो चुकी है और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव अभियान चलाएगी। इस बीच सिक्किम में इस महीने की 4 तारीख को तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है और 122 लोग लापता हैं। मृतकों में सेना के 9 जवान भी शामिल हैं। बाढ़ से 1320 मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब तक 2563 लोगों को बचाया गया है। लगभग 7025 लोगों ने 30 राहत शिविरों में शरण ले रखी है। बाढ़ से 13 पुल बह गए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 11वीं बटालियन ने बताया कि 6 अक्टूबर को चुंगथांग में सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड बांध की सुरंग से 6 लोगों को बचा लिया गया है। वायुसेना आज अपनी 51वीं वर्षगांठ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में बना रही है। इस अवसर पर बमरौली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर थलसेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान और मध्य हवाई कमान के जनरल ऑफिसर इन कमांड एयर मार्शल आरजीके कपूर भी उपस्थित थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने एक परेड में वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। इसके लिए वायुसेना के पुराने ध्वज को उतारकर सम्मानपूर्वक वायुसेना प्रमुख को सौंपा गया। अब इस ध्वज को वायुसेना संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख ने 4 इकाइयों को प्रशस्ति पत्र भी सौंपे। इनमें 16 स्क्वाड्रन, 142 हेलीकॉप्टर यूनिट, 901 सिग्नल यूनिट और 3 बेस रिपेयर डिपो शामिल हैं। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना की शक्ति शांति और युद्धकाल दोनों में उपयोगी होती है। इसके लिए हमें नई तकनीकों को अपनाते रहना होगा ताकि हम उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें।
The world is changing at a rapid pace and we must meet all the new challenges coming our way. We must continue to foster a culture of discipline, integrity and remain ever vigilant in the face of emerging threats. Our commitment to the defense of our nation remains steadfast and we will continue to protect our territory, deter potential adversaries and ensure the safety and security of our people.
एयर चीफ मार्शल श्री चौधरी ने बताया कि इस वर्ष के वायुसेना दिवस का विषय भारतीय वायुसेना वैश्विक हवाई शक्ति है। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष भारतीय वायुसेना ने मित्रवत विदेशी देशों के साथ दुनिया भर में 8 अभ्यास किए और असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। पहली बार हमारे देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान ने भी विदेशी अभ्यास में भाग लिया। अग्निवीरों के पहले बैच को सफलतापूर्वक शामिल कर लिया है और महिला अग्निवीरों सहित उसके बाद के बैच वर्तमान में बुनियादी प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। यह पहली वायुसेना दिवस परेड है जिसकी कमान एक महिला अधिकारी ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने संभाली व लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी भी हैं। पहली बार परेड में अग्निवीर महिला की टुकड़ी भी शामिल हुई। साथ ही परेड में पहली बार भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो की उड़ान भी देखने को मिली। गरुड़ ने हाल ही में राष्ट्र की सेवा के 20 वर्ष पूरे किए हैं। परेड में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और राष्ट्र की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया गया। स्काई पैरा जम्पर्स ने बेहतरीन करतब दिखाए और लोगों को रोमांच और जोश से भर दिया। इस कार्यक्रम के बाद दोपहर करीब 3 बजे संगम क्षेत्र में एयर शो आयोजित किया जाएगा। ओम अवस्थी, एआईआर न्यूज, प्रयागराज।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वायुसेना नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और देश को इस पर गर्व है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि वायुसेना के बहादुर पुरुष और महिला कर्मी हवाई क्षेत्र की निगरानी कर देश की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को अपने वायुसेना कर्मियों के शौर्य, समर्पण और निष्ठा पर गर्व है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वायुसेना की सेवा और बलिदान के कारण ही हमारा हवाई क्षेत्र सुरक्षित है।
हमारे एयर वॉरियर्स, उनके सराहनीय कार्य को लेकर देश वायुसेना के प्रति कृतज्ञ है। तूफान, बवंडर, बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक की प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज्बा अद्भुत रहा। 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री सिंह इटली के रक्षा मंत्री गाइडो क्रिस्टो से मुलाकात करेंगे। इस वर्ष मार्च में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों का दायरा रणनीतिक साझेदारी की तरफ बढ़ाया जाएगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री सिंह पेरिस में फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो के साथ पांचवीं वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पश्चिम बंगाल नगर निकाय भर्ती घोटाले के सिलसिले में राज्य सरकार भी मंत्री फिरहाद हाकिम के घर पर छापेमारी कर रही है। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में चेन्नई में भारत के साथ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। प्रतियोगिता में कल नई दिल्ली में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन से हरा दिया। कल ही एक अन्य मुकाबले में धर्मशाला में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से पराजित किया। चीन के हांगचाउ में आयोजित एशियाई खेलों का आज समापन हो रहा है। भारतीय एथलीट आज शाम 5:30 बजे समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक होंगे। इन खेलों में भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत तथा 41 कांस्य पदक सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने वर्ष 2018 में जकार्ता में बनाए गए अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को 37 पदकों से पीछे छोड़ दिया। और अब पेश है एशियाई खेल खबरों पर खेल डेस्क से निखिल कुमार की ये रिपोर्ट।
19वें एशियाई खेलों में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए मेडल्स की झड़ी लगा दी और इस बार 100 पार के लक्ष्य से भी कहीं ज्यादा पदकों से झोली भरकर ऐतिहासिक ऊंचाई को छू लिया। भारतीय एथलीटों ने देश को सोने की चमक भी खूब दिखाई। खेलों के 14वें दिन 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 12 पदक भारत के हिस्से में आए। भारत को ऐतिहासिक 100वां मेडल महिला कबड्डी टीम ने सोना जीत कर दिलाया। भारत की इस यात्रा को हम देखें तो सबसे ज्यादा 29 पदक एथलेटिक्स में मिले हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड और किशोर कुमार जैना ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पारुल चौधरी और अविनाश साबले का डबल पोडियम, तजिंदर पाल सिंह तूर का शॉटपुट खिताब, 4x400 मीटर रिले टीमों का शानदार प्रदर्शन और तेजस्विन शंकर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ डेकाथलॉन और ट्रैक एंड फील्ड के यादगार लम्हे इन एशियाई खेलों के साक्षी बने। निशानेबाजी में भारत ने 22 पदक जीते और 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की अगुवाई में सिफत कौर सामरा और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय क्रिकेट और कबड्डी टीमों ने भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल किया। हालांकि महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक भी जीता। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत का पहला बैडमिंटन गोल्ड जीता। एचएस प्रणॉय ने चोट के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। रोहन बोपन्ना और रुद्रजा भोसले ने मिक्स्ड डबल्स टेनिस का खिताब हासिल किया। स्क्वाश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार मिक्स्ड डबल्स का स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाजी में भारत ने 9 पदक हासिल किए और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेलों में रिकॉर्ड बनाते हुए महिला कंपाउंड के स्वर्ण पर कब्जा किया। भारत ने 41 वर्षों में अपना पहला एक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में स्वर्ण पदक भी हासिल किया। लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक 2024 ओलंपिक कोटा जीता। साथ ही निकहत जरीन, प्रीति पवार तथा परवीन हुड्डा ने भी ओलंपिक कोटा हासिल किए। आदित्य अशोक इन खेलों में रजत पदक जीतकर पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। पुरुषों के फ्री स्टाइल कुश्ती के 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया को रजत मिला और इस तरह से भारत ने एशियाई खेलों में 107 पदकों के साथ अपने अभियान को विराम दिया।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में 395 मीटर लंबी मरोग सुरंग के पास 250 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर रामबन और बनिहाल सड़क मार्ग पर स्थित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसराइल ने फिलिस्तीनी हमास हमले में शामिल होने पर लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी गुट को चेतावनी दी। इन हमलों में दोनों ओर के 500 से अधिक लोग मारे गए। अफगानिस्तान में तेज भूकंप से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। बाढ़ग्रस्त सिक्किम में नुकसान के आकलन और सहायता मुहैया कराने के लिए अंतर मंत्रालय समिति आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हुई, 122 अब भी लापता। वायुसेना ने आज अपनी 91वीं वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से इटली और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।